ધવલા પુસ્તક 12 લેક્ચર નંબર 7 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વજ્રાયાણં નમો લોયે સૌવસાહૂણં કમ્મઠજનિયવેયણ વહિ સમુત્તિર્ણયે જિણેણમિહું વેયણ મહાહિયારં વિવિહિયારં પરુએમો. આચાર્ય શ્રી વીરસેન સ્વામી રચિત યહ ધવલા નામક ટીકા હૈ જો ષટખંડાગમ ગ્રંથ પર લિખી હુઈ હૈ જિસકે કરતા હૈ પુષ્પદંત ઔર ભૂતબલિ આચાર્ય. ઇસમે જો ચૌથા ખંડ હૈ ઉસમે અભી હમારા 12 પુસ્તક મેં વેદના ભાવ વિધાન અનયોગ દ્વાર ચલ રહા હૈ. इस 12 पुस्तक के पृष्ठ संख्या 37 पर हम आ गए हैं, 37. पहले हमने अल्पभूत्व की बात देखी थी. जघन्य में अल्पभूत्व लगाया, 8 कर्मों का जो जघन्य अनुभाग है तो किसका जघन्य कम है किसका जघन्य ज्यादा है इसकी हमने देखी बातें. सबसे पहले हमने सबसे जघन्य हमने देखा था मोहनीय का. उसके बाद अंतराय का, क्योंकि वो तो देशघाती थे इसलिए. बाद में ज्ञानावरण दर्शनावरण का इक्वल था. उसके बाद आयु, आयु के बाद गोत्र और लास्ट में नाम कर्म का. अब सब आ गए तो थोड़ी अनुभाग की चर्चा में महाधवला की चौथी पुस्तक में इसे करना चाहती हूँ, इसके बारे में ही, जो हमें ये जानने के लिए अच्छा रहेगा. सुबह जरा उठकर होमवर्क कर दिया था. ये चौथी जो पुस्तक है महाधवला की, वो अनुभाग बंद के समय हमने पहले पढ़ा है ना. चौथी और पांचवी पुस्तक में अनुभाग बंद की चर्चा है महाधवला के. अभी इसमें अनुभाग बंध के बारे में यहाँ कुछ विशेष बातें बताते हैं, उसको हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे अपने. इसमें जो हमने पढ़ा है वही बात है, परंतु थोड़ी जरा अधिक स्पष्टता है. यहाँ तो अपने मूल प्रकृतियों की बात है, यहाँ तो कोई उत्तर प्रकृतियों की बात नहीं है. वहां पर भी हम मूल प्रकृतियों की ही बात देखेंगे, किसको क्या कहना, ये स्थान कैसे कहना, क्या क्या है उसकी चर्चा है इसमें. यहाँ तो कहते हैं कि ये अनुभाग में भी निषेक प्ररूपना कही है और स्पर्धक प्ररूपना कही है. तो निषेक प्ररूपना क्यों कही है, क्योंकि जितने निषेक तो स्थिति को बताते हैं, तो जितने निषेक बने हैं उस प्रत्येक निषेक में जघन्य से उत्कृष्ट स्पर्धक होते हैं, ये यहाँ विशेष बताया है. हमने लब्धिसार ग्रंथ में से भी निकाल कर आपको दिखाया था. ऐसा नहीं कि नीचे के निषेकों में कम अनुभाग और ऊपर के उत्कृष्ट, ऐसा कहीं भी नहीं है. उल्टा स्पेसिफिकली इसमें लिखा है कि जितने निषेक बनते हैं उन सभी निषेकों में ये सभी जाति के स्पर्धक होते हैं. क्योंकि यहां मैं 2 के पृष्ठ से पढ़ के बता रही हूं, महाबंध पुस्तक चौथी में तो कहते हैं कि 8 कर्मों के जो देशघाती स्पर्धक है. अब देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती उसकी भी बात करेंगे यहां पर. तो देखो, जो सर्वघाती है उसका सभी का उत्कृष्ट जो एक लेवल पर आएगा, सबका मैक्सिमम. और देशघाती में कौन से होते हैं वो तो हम देखते हैं. देशघाती कर्मों में देशघाती और सर्वघाती होते हैं. तो देशघाती जो स्पर्धक है वो कहां से, लता और दारू का अनंत भाग, और सर्वघाती दारू का बहुभाग, अस्थि और शैल. तो यहां कहते हैं कि 8 कर्मों के जो देशघाती, यहां कहते हैं 8 कर्मों में देशघाती कहां होते हैं, तो अघाती का जो मिनिमम जघन्य है वो भी देशघाती के जघन्य जैसा है. तो कहते 8 कर्मों का जो देशघाती स्पर्धक है उनके प्रथम वर्गणा से लेकर निषेक है। अपने अपने प्रथम वर्गणा का अर्थ क्या होता है? मिनिमम अनुभाग वाले परमाणुओं का समूह, यानी वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग किसको कहेंगे? एक एक परमाणु को, कर्म परमाणु को, अन्य परमाणु की बात नहीं, यहाँ कर्मों की बात चल रही। तो कहते प्रथम वर्गणा से लेकर निषेक है जो आगे बराबर चले गए हैं, और चार घाती कर्मों के जो सर्वघाती स्पर्धक है उनके प्रथम वर्गणा से लेकर निषेक है जो आगे चल रहे हैं। यानी इसकी बात आगे भी बताई है, बाद में उसकी बात करूंगी, पहले मैं इसको विशेषार्थ यहाँ का पढ़ रही हूँ। ये मैं बहाधौला में से पढ़ रही हूँ। आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होने वाले कर्मों में राग द्वेष और मोह के निमित्त से जो फलदान शक्ति होती है उसका नाम अनुभाग है। अभी उसमें ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति, ये तो मालूम है, और मति ज्ञानावरण आदि जो हम उसके भेद करेंगे तो उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। अभी यहाँ तो मूल प्रकृतियों का विचार है। अब कहते हैं यहाँ तो दो अनुयोग द्वार मैंने अभी बताया, निषेक प्ररूपणा और स्पर्धक प्ररूपणा, और अनुभाग में जो है सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं, वो भेद घाती कर्मों में संभव है। और फिर भी अघाती कर्मों का जो अनुभाग है तो उसमें भी प्रतिजीवों का घात करने में समर्थता होने से वो कथनचित उसको भी घाती कहता है, ये तो हमने पहले पढ़ा था आपको याद होगा। तो अब यहाँ जो स्पर्धक प्ररूपणा है उसकी बात मैं यहाँ पढ़ूंगी। देखो, सबसे जघन्य अनुभाग शक्ति के अंश का नाम है अविभाग प्रतिच्छेद। प्रत्येक कर्म परमाणु में ये अविभाग प्रतिच्छेद अनंतानंत होते हैं, यानी मिनिमम भी अनंतानंत है, किंतु यहाँ ऐसे कर्म परमाणु विवक्षित है जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एक वर्गणा। ऐसे जितने कर्म परमाणु होते हैं उनमें से प्रत्येक की वर्ग और उसके समुदाय की वर्गणा संज्ञा है। ये तो यहाँ तो समझ में है ना, एक परमाणु को वर्ग कहेंगे और सभी को मिलकर वर्गणा, पर वर्गणा में स्पेसिफिक का एक क्या बात है, सभी का अनुभाग समान है। अनुभाग की अपेक्षा एक एक वर्गणा में अनंतानंत वर्ग होते हैं, एक वर्गणा में परमाणु की संख्या अनंतानंत है, और अनंतानंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है। हमने देखा वर्गणा किसको कहना, तो जो पहली वर्गणा है उसमें जितना विभाग प्रतिच्छेद, उसमें एक बढ़ेगा तो दूसरी वर्गणा, और एक बढ़ेगा तीसरी वर्गणा, ऐसे अनंत वर्गणा होती है। फिर बीच में अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों का अंतर करके फिर दूसरा स्पर्धक होता है, उसमें भी अनंत वर्गणा होती है, फिर तीसरा स्पर्धक, उसमें भी अनंत वर्गणा। इस तरह से इसकी रचना होती है, स्पर्धकों की रचना होती है। अब कहते हैं इसमें से संज्ञा नाम का जो प्ररूपणा है उसकी बात महत्व जो अपने से लगती हुई है, इसलिए मैं यहां से वो द्विस्थानिक त्रिस्थानिक की बात हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ तो घाती संज्ञा कहते हैं और अघाती संज्ञा कहते हैं। ये जो चार घाती कर्मों का जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो सर्वघाती होगा कि देशघाती होगा? सर्वघाती होगा ना, उत्कृष्ट अनुभाग। अब कहते हैं चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद की बात है, सर्वघाती होता है, और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद सर्वघाती भी होता है देशघाती भी होता है। देखो उत्कृष्ट किसको कहेंगे? वो शैल वाले को, और अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट क्योंकि शैल में अनंत है तो शैल वाले भी हो गए, अस्थि वाले भी हो गए, दारू के बहुभाग वाले भी हो गए। तो कहते घाती कर्म इतना ही कहा है, उसके उत्तर प्रकृतियों की बात नहीं है, तो देशघाती भी उसमें हो गए। घाती कर्मों का जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो कैसा है? सर्वघाती है। और अनुत्कृष्ट जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट, वो कैसा है? सर्वघाती भी है देशघाती भी। ये तो समझ में आई बात। अब जघन्य अनुभाग कैसे होगा? देशघाती, क्योंकि हम मूल प्रकृतियों की बात करेंगे। अगर हम पूछेंगे केवल ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग, वो तो सर्वघाती होगा। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो अन्य जो चार कर्म है, अनुत्कृष्ट अनुभाग सर्वघाती देशघाती है, जघन्य अनुभाग बंध कैसे होगा? चार, यानी चार जो कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनीय और अंतराय, इनका जघन्य अनुभाग बंध कैसा होगा? देशघाती होगा कि सर्वघाती होगा?
ज्ञानावरण में तो देशघाती सर्वघाती दोनों होगा ना, जघन्य नहीं तो
जघन्य
जघन्य
देशघाती होगा और अजघन्य पूछेंगे तो देशघाती सर्वघाती सब कहेंगे। ये इतना तो संबंध बात है। अब जो चार घाती कर्मों का बंध कैसे कैसे होगा, हमने साता और असाता की बात देखी थी, ज्ञानावरण में साता के बंधक असाता के बंधक, हमने अभी 11वें पुस्तक में चूलिका में देखा था स्थिति बंध स्थानों में। अब यहाँ पूछ रहे हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये घाती कर्म है तो उसका उत्कृष्ट बंधक कैसे होगा? चतुस्थानिक होगा, क्योंकि हमने देखा ना उच्छैल वाला है ना, चतुस्थानिक होता है। अनुत्कृष्ट बंध कैसे कैसे होगा, जो उत्कृष्ट नहीं हो? हाँ बोलो। चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक, एक स्थानिक भी होगा। साता असाता में हमने द्विस्थानिक से शुरू की थी बात। ये डिफरेंस मुझे बताने आपको, घाती कर्मों में उत्कृष्ट तो चतुस्थानिक है ही, यानी वो शैल वाले। अनुत्कृष्ट क्या होगा? चतुस्थानिक भी होगा, किसी को त्रिस्थानिक भी होगा, द्विस्थानिक भी होगा और एक स्थानिक भी होगा। श्रेणी में होता ना एक स्थानीय बंध। देखो मैं इस यहां से पढ़ती हूँ, चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट तो चतुस्थानिक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध, यानी जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट, चतुस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है, द्विस्थानीय होता है, एक स्थानीय भी होता है। जघन्य कैसा होगा? एक स्थानीय। कहाँ होता है, क्या होता है, अभी हमने जो देखा था ना, हमने अभी उसका स्वामित्व में देखा था कि ज्ञानावरण का जघन्य बंध की बात है, स्वामी यानी सत्व की बात नहीं। हम जो अभी धवला में पढ़ रहे वो सत्व और बंध दोनों को लेते हुए, या केवल बंध की बात चल रही है। हाँ तो जघन्य बंध कहाँ देखा था? ये तीन घाती कर्मों का तो 10वें के अंत में और मोहनीय का 9वें के अंत में, बराबर है ना, तो वहाँ एक स्थानीय होता है, तो जघन्य बंध एक स्थानीय होता है। और अजघन्य कहेंगे तो सारे अजघन्य है ना उत्कृष्ट तक, एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय, चतुस्थानीय। यहाँ तक समझ में आई बात? अब अघाती की बात है, चार अघाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कैसे होगा? मूल प्रकृति की बात है, हमने देखा था उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी, वेदनी का उत्कृष्ट अनुभाग बंध की बात है। अभी सत्वा की बात छोड़ो, वेदनी का देखो, हमें शुभ अशुभ दोनों को मिलकर विचार करना है। अभी वेदनी का उत्कृष्ट अनुभाग बंध 10वें के अंत में हुआ था, सत्व बाद में भी हुआ था, अभी हमने बंध केवल यहाँ बंध की चर्चा है, वो तो समझ में वेदनीय का। अभी आयु का, वो तो सातवें गुणस्थान में जो अनुत्तर विमानवासी वो हुआ है, तो वो भी होगा चतुस्थानिक।
तो वेदनीय का भी चतुस्थानिक होगा?
हाँ हाँ, नियर नेचुरली, क्योंकि वो तो प्रशस्त प्रकृति है और उत्कृष्ट अनुभाग बन रहे थे। यही कहते कि चार अघाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानिक होता है। वेदनी के हमने देखे, नाम गोत्र भी हमने देखा था, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र वहां बनता है, आयु को भी देख लिया, यानी चार अघाती का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कहाँ होता है? वो तो क्षपक श्रेणी में। अनुत्कृष्ट कैसा होगा? जो उत्कृष्ट नहीं है वो सारा अनुत्कृष्ट है, जघन्य भी अनुत्कृष्ट में आ जाएगा। चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक, उसमें एक स्थानिक बंध नहीं है। घाती में चारों ही प्रकार का बंध है, चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक, एक स्थानिक, ये डिफरेंस है। ये कल अपने ख्याल में नहीं आया था, केवल हमने वो असाता में वो चतुस्, त्रि और द्वि इतना देखा था। ऐसा क्यों? क्योंकि विशुद्धि हो जावे, हमें मूल प्रकृतियों का अनुभाग देख रहे हैं और उसमें तो प्रशस्त प्रशस्त दोनों होती है। अगर एकदम तीव्र विशुद्धि हो तो चतुस्थानिक हो रहा है प्रशस्त प्रकृतियों का, तो मूल प्रकृतियों में चला जाएगा वो। अर्थी संक्लेश में अप्रशस्त का हो रहा है चतुर्स्थानिक, तो वो भी उत्कृष्ट में चला, यानी उसमें चला जाए, चतुर्स्थानिक में चले, हम मध्यम परिणामों में लेना चाहिए। तो मध्यम परिणामों में द्वि, त्रि और चतु हो जाएंगे। हाँ बताया था, हमने देखा था उसको, मध्यम परिणाम में ही होता है और उसका कारण भी बताया था, यानी घाती अघाती में ये डिफरेंस है। अभी उसके डिटेल में नहीं जाना है हमको, बनता ही नहीं है अघाती में, एक स्थानीय नहीं बनता। अभी वो प्रत्यय वगैरह की चर्चा नहीं करनी हमको उसमें, क्योंकि यहाँ वहाँ क्या है, इन जनरल और मार्गणाओं में इसी चर्चा है, हमें मार्गणाओं की बात लेनी नहीं है। ये चौथा भाग है, बहुत विस्तार है उसके अंदर, पर ये थोड़ा मुझे बताना था, जब फिर दूसरा कोई विषय आएगा तो हम उसको ले लेंगे, क्योंकि चौथे और पांचवें पुस्तक में अनुभाग बंद की बात है, महाबंध में। अभी अपने धवला पुस्तक 12वीं पेज नंबर 37 पर आते हैं हम। जघन्य अल्पभूतव के बाद हमने कल उत्कृष्ट अल्पभूतव देखना शुरू किया था, और हमने 48 नंबर का सूत्र भी पढ़ा था, उसमें ये बात देखी थी कि उत्कृष्ट पद का अवलंबन लेकर भाव की अपेक्षा आयु कर्म की उत्कृष्ट वेदना सबसे स्तोक है, यानी आयु कर्म का जो अनुभाग है वो सबसे कम है। उसका कारण तो समझ में आवे ऐसा है, क्यों? हाँ अश्विन भाई बताएंगे।
आयु कर्म का सात्विक गुणस्तर में उत्कृष्ट,
देखो देखो वहां जो मध्यम परिणामों में आयु बनती है, अति विशुद्ध में नहीं बनती है, समझ में आती है बात, इसलिए इसको जो सबसे कम अनुभाग वाला लिया। कौन से कर्म के, परंतु उसके अविभाग प्रतिच्छेदों की जो संख्या है उसको गिनना है हमको। हाँ इसीलिए वो अल्पभूतो दंडक में तो यही बताया है, प्रकृति के अनुसार उसमें डिफरेंस है, और यहाँ वही तो बताना है, प्रत्येक प्रकृति के अपनी अपनी विशेषता है। देखो अभी 37 पेज पर 49 नंबर का सूत्र हमको पढ़ना है।
तो एक बार हम लोग ने इसे भी देखा था कि विद्यात्म गुणस्थान में जो बंद होता है वहाँ पे जगने से लेकर उत्कृष्ट तक सभी बंद होता है, बंद की अपेक्षा।
क्या क्या, कौन सा बंद? वहाँ का
अनुभाग,
देखो
वहाँ पे स्पर्धक सभी रहते हैं, इसे मेरा ख्याल में था।
देखो स्पर्धक सभी का अर्थ क्या है, जघन्य से लेकर सभी होते हैं,
वहाँ पे अनुभाग की अपेक्षा उत्कृष्ट बंद भी होगा।
उत्कृष्ट बंद वेदनी का होगा क्या?
नहीं
अभी हम, नहीं तो स्वामित्व का प्रसंग ही नहीं आता ना, सभी मिथ्या दृष्टि को ही कह देते। मार्ग मिथ्या दृष्टि के मार्गणा होगी तो उसके योग्य वहाँ जघन्य से उत्कृष्ट की चर्चा करेंगे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। ओघ से ने सभी गुणस्थानों में, सभी गतियों में, सभी इंद्रियों में, सब मिलकर जहां जो उत्कृष्ट है उसकी बात यहाँ चल रही है, इसको कहते हैं ओघ से उत्कृष्ट। अब पूछेंगे मनुष्यों में उत्कृष्ट किसके होता है, नारकी में उत्कृष्ट किसको होता है, तो वो अलग अलग चर्चा होगी उसकी, उसकी बात अपनी है ही नहीं यहाँ का विषय, मार्गणा में आएगा आदेश जिसको कहेंगे। अभी हम आगे सूत्र पढ़ेंगे, नानावर्णीय दंशनावर्णीय अंतराय वेयणा भावदो उक्कसियाओ तिन्नीवी तुल्लाओ अनंत गुणाओ। इसका स्वामी कौन याद था? वो मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त वगैरह वगैरह सारी कंडीशंस लगाई थी, तो तीनों का जो बताया है यहाँ पर, यानी वो चतुस्थानिक यहाँ बंद, ये अप्रशस्त प्रकृतियां है तो उनका चतुस्थानिक बंद होगा मिथ्या दृष्टि संकलेश वाले को। तो भाव की अपेक्षा ये पहले नंबर पर आयु को लिया था, दूसरे नंबर पर ये तीन को लेना है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय की उत्कृष्ट वेदनाएं यानी अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर आयु कर्म की उत्कृष्ट वेदना से अनंत गुणी है। हमारी कंपैरिजन जिसको अल्पभूतव कहते हैं किससे चल रही है, सबके उत्कृष्ट अनुभाग की, आयु के उत्कृष्ट अनुभाग से इन तीन कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणा है, अधिक है। शंका, यतः केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों ही समान है, अतः केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण के अनुभाग में भी समानता रही आवे, यानी उसको तो स्वीकार है, किंतु अंतराय के अनुभाग को इनके समान मानना उचित नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत वीर्य में समानता नहीं है। समाधान, क्योंकि देखो जब जघन्य अनुभाग की बात हुई थी तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का एक साथ लिया था और अंतराय का अलग लिया था, क्योंकि वो तो देशघाती प्रकृति थी। इसलिए ये प्रश्न यहाँ उठा रहे, उत्कृष्ट में भी आप अलग अलग करो, और उसके लिए क्या कारण बता रहे हैं कि वो दोनों तो समान है परंतु अनंत वीर्य की समानता नहीं हो सकती। तो कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत वीर्य में समानता स्वीकार की गई है। शंका फिर पूछते हैं, उन तीनों में समानता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, वह इसी सूत्र से जाना जाता है, और आवारक शक्ति, आवारक यानी आवरण करने की शक्ति, आवारक शक्ति के समान होने पर उनके द्वारा आवरण करने योग्य गुणों में असमानता मानना उचित नहीं है। यानी कहते कि आवरण वाले कर्म कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उनमें तो समान अविभाग प्रतिच्छेद है, इसलिए जो गुण है और गुण की जो शक्ति है, कौन सा? केवल ज्ञान और केवल दर्शन, वो भी समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले हैं, क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है। शंका, तो फिर आयु के उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा उनका अनुभाग अनंत गुणा है, यह कैसे संभव है? क्योंकि अल्पभूतों में पहले नंबर पर आयु को लिया था और बाद में इन तीनों को लिया था, तो उससे ये अनंत गुणा क्यों है, ये पूछ रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि अंतरंग व बहिरंग कारणों से प्रतिबद्ध उनके अनंत कार्य उपलब्ध होते हैं, इससे ज्ञात होता है आयु के उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा उनका अनुभाग अनंत गुणा है। क्या कहते हैं? ये जो अलग अलग कार्य है, जो उसके जो, तो उसमें अंतरंग और बहिरंग कारण, उपादान और निमित्त के जो अनेक भेद होते हैं, या अंतरंग में भी उसके जो जीव के अपने भावों की भी वहाँ बात होती है, विशुद्धि की भी बात होती है, तो उसमें अनंत कारण हो गए तो उसके कार्य भी अलग अलग अनंत हो सकते हैं। अब 50 नंबर का सूत्र, मोहनीय वेणा भावदो उक्कस्या अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा मोहनीय की उत्कृष्ट वेदना अनंत गुणी है। यानी मोहनीय का जो उत्कृष्ट अनुभाग जो है वो अनंत गुणा है, कारण कि ऐसा स्वभाव है और स्वभाव युक्ति का विषय नहीं होता। बहुत बार ये ऐसा है ना, या स्वभाव जो है आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता। देखो जघन्य में मोहनीय पहले नंबर पर लिया था, है ना? हाँ, यहाँ उत्कृष्ट में आयु का पहला नंबर लिया। हाँ, उत्कृष्ट के उत्कृष्ट के साथ तुलना है, जैसे हम स्थितिबंध, उत्कृष्ट स्थितिबंध में तुलना हो सकती है कि नहीं? वहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदिनी अंतराय को 30 कोड़ा कोड़ी वालों को एक साथ रखा था। अनुभाग में तो प्रशस्त अप्रशस्त का डिफरेंस आता है फिर, इसलिए वेदनी का अलग लिया है, ज्ञानावरण का उसका स्वामित्व भी मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का, वेदनी के उत्कृष्ट का अनुभाग तो हमने देखा था। बंध की अपेक्षा देखेंगे 10वें, सत्व की अपेक्षा तो 14वें तक, ये तो हमने देखा था उसका स्वामित्व। अब ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट में कितना भेद है उसकी चर्चा चल रही है।
ऊपर जो बताया था अंतरंग और बहिरंग कारण में, बहिरंग कारण में तो कर्मों को ही लेना पड़ेगा ना।
देखो देखो
ये जो समाधान में
अब यहाँ बहिरंग कारण कर्मों की बात हो रही है, कर्मों के अनुभाग की बात है, तो अंतरंग में तो कर्मों का अपना स्वभाव लेना पड़ेगा और बहिरंग में जीवों के भाव को लेना पड़ेगा। कर्म का उपादान कर्म में लेना है ना, और कर्म के लिए जीव के भाव हम देखें अनंत गुणी विशुद्धि या जो कुछ होते हैं। अब प्रश्न पूछते जाना, हमारे जरा क्लैरिटी बढ़ जाती है। देखो कि मोहिनी की उत्कृष्ट अनंत गुणी क्यों है ज्ञानावरणादि से, क्योंकि वो भी घाती ये भी घाती, वो भी अप्रशस्त है ये भी अप्रशस्त है, तो समान एक लेवल पर रखो। तो कहते कि ऐसा ही स्वभाव है, और स्वभाव युक्ति का विषय नहीं होता। क्योंकि अग्नि दाहजनक होकर भी मृत्युदायक है इत्यादि में कोई युक्ति नहीं पाई जाती। यानी कोई स्वभाव युक्ति कहने, अग्नि में अग्नि क्यों ऐसा गर्म होता है, बर्फ क्यों नहीं गर्म होती है, शक्करी मीठी क्यों होती है, हाँ वही तो कह रहे हैं। स्वभाव यहाँ क्या लिखा, स्वभाव युक्ति का विषय नहीं होता, स्वभाव स्वभाव है बस। पेज नंबर 37, 51 नंबर का सूत्र देखो। यहाँ उत्कृष्ट अनुभागों में कंपैरिजन चल रही है। जो उत्कृष्ट अनुभाग है, आयु का उत्कृष्ट अनुभाग है, उसके अभिभाग प्रतिच्छेद कम है, उससे ज्ञानावरण दर्शन अंतराय के जो है वो उससे अनंत गुणा है, मोहिनी के उससे भी अनंत गुणा है। और अभी 51 नंबर पर हम पढ़े हैं, नामा गोदवेणाओ भावदो उपकसियाओ दोवी तुल्लाओ अनंत गुणाओ, उनसे भाव की अपेक्षा नाम व गोत्र की उत्कृष्ट वेदनाएं दोनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी है। हमने देखा था इसका बंध, उत्कृष्ट अनुभाग बंध दसवें के अंत में होता है और बाद में सत्ता रहती है उसकी। तो कहते हैं अभी 38 पेज पर, क्योंकि ये दोनों शुभ प्रकृति है। शुभ प्रकृति है तो क्षपक में जहां उनकी बंध विच्छित्ति होती है वहां उत्कृष्ट अनुभाग बंध पाया जाता है। शंका, अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग से शुभ प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा क्यों है? अभी क्योंकि यहाँ क्या ले गया है, नाम और गोत्र है, ये कैसी प्रकृतियां आघाती है, आघाती में नाम में भी और गोत्र में भी, शुभ नाम अशुभ नाम, गोत्र में शुभ में उच्च गोत्र, अशुभ में नीच गोत्र, ऐसे दो दो भेद पाए जाते हैं। तो कहते अशुभ से, क्योंकि यहाँ अशुभ को क्यों नहीं लिया, नाम गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग पहले गुण स्थान में बताना था, वहां पर भी नाम कर्म की नरक गति वगैरह प्रकृतियां तो बंद ही रही है वहां पर, तो उसको उत्कृष्ट क्यों नहीं कहा? तो नहीं कहा इसलिए उसने प्रश्न ये पूछा है, क्योंकि पहले भी ये बात बता चुके थे, अशुभ प्रकृतियों की अपेक्षा उसी की जो शुभ प्रकृतियां हैं, घाती में अघाती में ये भेद होता है, तो उनका अनुभाग अनंत गुणा क्यों है, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर से शंका क्या है, अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग से शुभ प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा क्यों है? समाधान, क्योंकि वैसा स्वभाव है और स्वभाव प्रश्न के विषय नहीं हुआ करते। वाय ऐसा प्रश्न उसमें नहीं होता है, जघन्य में लिया था, जघन्य में भी देखो यहाँ तो सत्व की भी बात ले रहे हम, केवल बंध की नहीं ले रहे, सत्व को साथ में लेते हुए हम बात कर रहे थे। तो जब हमको गोत्र का जघन्य देखना है तो गोत्र का जघन्य, आप अगर नीच गोत्र का जघन्य देखने जाओ तो कहते कि उसके साथ सत्ता में तो उच्च गोत्र पड़ा है, उच्च गोत्र का देखने जाओ सत्ता में नीच गोत्र पड़ा है, तो हमें इस तरह से देखना है कि नीच गोत्र का जघन्य होवे, क्योंकि हमने देखा अशुभ में जघन्य होगा, शुभ में शुभ का जघन्य उससे अनंत गुणा होगा, अशुभ के जघन्य से शुभ का जघन्य अनंत गुणा होगा। इसलिए अभी हमें ऐसा लेना है कि अकेला नीच गोत्र सत्ता में भी होना चाहिए और उसका बंध होना चाहिए, इसलिए हमने वो अग्नि का एक तेजकाय की बात की थी, उसने वो तो उद्वेलना की थी उच्च गोत्र की और बाद में हत समुत्पत्तिक होकर उसने अनुभाग बंध किया था, याद आई ना, वो जघन्य की बात थी। अब यहाँ उत्कृष्ट की बात देख रहे, उत्कृष्ट में आयु का उत्कृष्ट अनुभाग सबसे कम, फिर ज्ञानावरण दर्शन अंतराय का, फिर मोहनीय का और फिर नाम गोत्र का। नाम गोत्र में शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट लेना है जो हमने देखा दसवें के अंत में बनती है, और नाम गोत्र से भी वेदनीय को लेना, वो अनंत गुणा लेंगे। अभी बताएंगे क्या कहा पहले में, पहले स्वभाव और स्वभाव प्रश्न के विषय नहीं हुआ करते, पहले भी बात हुई थी ना, वहां तो ये कहा था, वहां स्वभाव स्वभाव जो है युक्ति का विषय नहीं है, और यहाँ कहते हैं प्रश्न के विषय नहीं हुआ करते। अब वेदनीय वेयणा भावदो उक्कस्य अनंत गुणा, उनसे भाव की अपेक्षा वेदनीय की उत्कृष्ट वेदना अनंत गुणी है। यानी वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग नाम और गोत्र के उत्कृष्ट अनुभाग से अनंत गुणा है। स्वामी तो एक ही पोजीशन पर लिया, जहां वेदनीय का उत्कृष्ट बंध हो रहा है, कहां पर बंध दसवें के अंत में हो रहा है, नाम गोत्र का भी उधर ही हो रहा है, परंतु उनमें भी उनके उत्कृष्ट और उनके उत्कृष्ट में डिफरेंस है, ये कहना चाहते हैं। कारण कि यश कीर्ति और उच्च गोत्र की अपेक्षा साता वेदनीय अतिशय प्रशस्त है। प्रशस्त प्रशस्तों में वो तरतमता बता रहे। ऐसे भी हमने देखा था वहां नाम गोत्र का बंध कितना होता है, स्थिति बंध
8
वेदनीय का 12, क्योंकि वो बीसीए तीसीए का प्रोपोर्शन है जो उसमें, उससे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग अल्प भूतव समाप्त हुआ। देखो अल्प भूतव में हमने जघन्य से जघन्य की कंपैरिजन की कल, आज उत्कृष्ट से उत्कृष्ट की कंपैरिजन की। अब कहेंगे जघन्य और उत्कृष्ट एक साथ लेके उसकी कंपैरिजन करेंगे, ये तो अभी बताएंगे 53 नंबर के सूत्र से। जहन्नुक्कस्य पदेन सौवत्थोवा मोहनीय वेणा भावदो जघन्या, जघन्य उत्कृष्ट पद से भाव की अपेक्षा मोहनीय की जघन्य वेदना सबसे सुख है। आपको नंबरिंग करना, यहाँ एक नंबर डालना, पहले डाला हुआ है हाँ, आप दूसरे के पुस्तक में नहीं डालो, अपनी होगी तो डालना। तो कहते यह सूत्र सुगम है,
ये नौवे उसका
हाँ नहीं नौवे के अंत में नहीं, मोहनी की जघन्य दसवें के अंत में। बंध नहीं देख रहे अभी हम महाबंध में हमने केवल बंध को देखा था, ये गड़बड़ होती, इसीलिए हम बार बार हमको याद करना है, याद रखना है, यानी रिवीजन करना है उसकी क्या है। क्योंकि देखो बंध कहाँ हुआ, नवे के अंत में, और दसवें गुणस्थान में क्या शब्द आया था याद है, तेजल आपको याद है, कौन बताना चाहते लक्ष्मी? दसवें गुणस्थान में अनुभाग के घटने को कुछ नाम हमने बताया था, अनुसमयापवर्तन। पहले तो अनुभाग कांडक होते थे, कांडक यानी अंतर्मूर्त में एक एक घटना होता था, अब यहाँ क्या हो रहा है, प्रति समय हो रहा है, अनंत बहुभाग का घात हो रहा है। और ऐसे दसवें के एक एक समय में होते होते जघन्य अनुभाग कहाँ पाया जाता है, दसवें के अंतिम समय में। देखो क्योंकि बाद में तो उसकी सत्ता ही नष्ट होती है, तो उसकी सत्ता कहाँ पर तक है, दसवें के अंत में जो सत्ता है ना, वो उदय रूप निषेक है, उतनी सत्ता है, और तब उसका अनुभाग मिनिमम पाया जाता है, तो उसको पहले नंबर पर रखा। यह सूत्र सुगम है। 54 नंबर, अंतराय वेयणा भावदो जहन्या अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा अंतराय की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। यह सूत्र सुगम है। अब ये अंतराय बंधा कहाँ पर, जघन्य बंधा दसवें में, और बारहवें के अंत तक वो अनुसमयापवर्तन होते गया, तो वहां उसका स्वामित्व बताएंगे। मोहनीय का तो दसवें के अंत में, अंतराय के बारहवें के अंत में, फिर भी मोहनीय का जघन्य क्यों, याद है
मोहनीय का सूक्ष्म पुष्टि होती
है। दूसरे लोगों को जरा विचार करने दो, मनीषा बेन याद है क्या पूछा, मोहनीय का जघन्य कहाँ है, सत्ता में दसवें के अंत में, अंतराय का जघन्य बारहवें के अंत में, तो और आगे चलकर उसका जघन्य हुआ ना, तो और मिनिमम होना चाहिए थे, मोहनीय को जघन्य क्यों मिनिमम क्यों कह रहे, ये प्रश्न है। आप तो नहीं थी ना, कहती याद देखो देखो मोहनीय में क्या हुआ था, पहले पूर्व स्पर्धक थे, फिर अपूर्व स्पर्धक बने, फिर बादर कृष्टि बनी, फिर सूक्ष्म कृष्टि बनी, और अनुसमयापवर्तन भी हुआ, इतना सारा मोहनीय में हुआ। और अंतराय में क्या हुआ, स्पर्धक रूप से ही रहे, और स्पर्धक रूप से ही उसका अनुसमयापवर्तन है, उसका स्पर्धक रूप से वो कृष्टि भी नहीं हुई उसकी, इसलिए मोहनीय से उसका अनुभाग अनंत गुना है। ये समझ में, एक्चुअली वो बारहवें में और विशुद्धि ज़्यादा थी, उसका अनुभाग और घटना था, तो ये अंतराय को दिया दो नंबर पर। आगे बढ़ते हैं, नानावर्णीय दंसनावर्णीय वेयनाओ भावदो जहनियाओ दोवी तुलनाओ अनंत गुणाओ, उससे भाव की अपेक्षा ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय की दोनों एक साथ लिए जघन्य वेदनाएं दोनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी है। अब जहां पर अंतराय का जघन्य है वहीं पर ज्ञानावरण दर्शनावरण का अंतर है बारहवें के अंत में, और उसमें भी समान सारे वो भी स्पर्धक रूप से थे और उसमें भी ये सब बातें हुई थी। अब कौन बताना चाहता है? हाँ, अश्विन भाई को मौन दिया जाता है। कौन? ब्रह्मा बताएंगे प्रतिभा ताई। क्या कहा? जहां पर अंतराय का जघन्य है उसी पॉइंट पर ज्ञानावरण दर्शनावरण का जघन्य है, फिर भी दोनों में डिफरेंस क्यों, और वो भी अनंत गुणा का? हाँ, हुआ, दोनों में हुआ था, ज्ञानावरण में भी नहीं हुई थी। अंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण तीनों में सेम प्रोसेस हुए थे। मैं वो याद है, अरे सब तीनों घाती है। हाँ, देखो देखो देखो, अंतराय देशघाती प्रकृति है और वो सर्वघाती प्रकृति। देशघाती का अनुभव कम होकर हमने देखा था वो देश, उसमें देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, परंतु जब अनुभव घटते घटते वो एक स्थानीय अनुभव हुआ था, आपको याद होगा, बंदनी सत्ता में, सत्ता में वो एक स्थानीय होकर और घटता है, एक स्थानीय हो जाता है। और जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कैसे जो है प्रकृतियां है, उसमें भी सर्वघाती देशघाती दोनों है, पर उसमें सर्वघाती प्रकृतियां भी रहेगी कि नहीं, तो उसका तो सर्वघाती रूप से ही जघन्य होगा, वो कभी एक स्थानीय में आएगी ही नहीं, वो तो उसके परमाणु तो बने ही रहेंगे उतने। तो इससे कहते कि ज्ञानावरण दर्शनावरण उससे अनंत गुना है। ये 55 हो गया, यह सूत्र सुगम है। रीजनिंग ये है, अंतराय कर्म ये देशघाती प्रकृति है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण मूल प्रकृति में तो हम उसको देशघाती सर्वघाती नहीं कह सकते, तो उसमें दोनों ही टाइप के प्रकृतियां हैं। अंतराय के पांचों देशघाती है, और ज्ञानावरण में दर्शनावरण में सर्वघाती देशघाती दोनों प्रकृतियां हैं। तो ज्ञानावरण इन जनरल का कितना भी अनुभाग क्यों कम हो, ये मति ज्ञानावरण आदि चार कर्म है, उनका तो अनुभाग एक स्थानीय हो जाता है, तो केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण का अनुभाग वो तो शैल से अस्सी, अस्सी से दारू के बहुभाग तो आके रुकेगा, वो तो और घटेगा ही नहीं, तो उसका अनुभाग उतना अनंत गुणा ही रहेगा, ये कहना चाहते। समझ में आई ये बात? अब 56 सूत्र, आवो वेणा भावदो जहनिया अनंत गुणा, उनसे भाव की अपेक्षा आयु की जघन्य वेदना। आयु की जघन्य वेदना याद है? आयु जो बांध रहा है वो कौन है?
मनुष्य और तीर्यंच।
हाँ, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य तीर्यंच को लिया है, और वो लब्धिया पर्याप्त की आयु बांध रहा है, उसको लिया था। तो वो जो है वो अनंत गुणी है। हाँ, आपका प्रश्न जरा माइक में बोलना जरा।
यहाँ पर हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं, अल्पभू तो देख रहे हैं,
हाँ,
वो उत्कृष्ट जगन्य उत्कृष्ट पद के अपेक्षा से
बराबर है,
और हर जगह जगन्य जगन्य बता रहे हैं।
हाँ, क्योंकि जगन्य जगन्य सबसे कम है ना, ऐसा भी कभी होगा किसी के उत्कृष्ट से किसी का जगन्य ज्यादा है क्या? ऐसा होता तो उसी बीच में उत्कृष्ट भी आ जाता। हाँ, क्योंकि पहले सब जघन्य आ जाएगी, फिर सबकी उत्कृष्ट आ जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के उत्कृष्ट से किसी की जघन्य ज्यादा हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना, होता तो बताते, जिसे हमने अवगाहना के भेद में देखा था कि कहीं कहीं सूक्ष्म की अवगाहना जघन्य से उत्कृष्ट तक भेद बताए, और उसमें बीच में ही बादर की जघन्य उसमें बीच में आ जाती है, यानी बादरों की जघन्य अवगाहना सूक्ष्म के उत्कृष्ट से भी कम हो सकती, इस तरह से हमने देखे थे उसके। तो ऐसा अगर यहाँ होता तो बता देते, तो पहले सारे जघन्य आ गए और फिर सारे उत्कृष्ट ले लिए उन्होंने। आयु में बंध और वहाँ मरकर जाता है उस अपर्याप्तों में, मनुष्य तीरंज उसने बांधी लब्धि अपर्याप्त की, सत्ता में भी पड़ी है और उस पर्याय में जन्म लेगा, ने वहाँ पर्याय में जन्म लेगा तो वहाँ पर भी है। बंध की अपेक्षा जब बंध रहा है तो है हाँ, और जब मरकर उन पर्याय में जाएगा तो उसकी उतनी आयु रहे नहीं। बंद देखो देखो निकालो निकालो,
दोनों की अपेक्षा लेते हैं
नहीं, उनको क्या कहना है बंधनी आयु ले ले, उन सत्ता में तो बुज्जमान आयु भी पड़ी है उन्होंने तो ऐसा ही लिया है। देखो देखो ये पेज नंबर 27 पे था, 34 पर है हाँ, आयु कर्म की जघन्य वेदना। वो देखें मनुष्य तीर्यंच योनि वाले जीव के द्वारा परिवर्तमान मध्यम परिणामों से बांधी गई आयु की अपेक्षा है, यानी वो बंधनी आयु की अपेक्षा ही वहां ली है, क्योंकि सत्ता में देखेंगे तो उसके मनुष्य आयु और तीर्यंच के तीर्यंच आयु तो पड़ी है, उसका अनुभव तो ज्यादा है, उसकी चर्चा नहीं की, बंध की अपेक्षा ही लगाई है। और सत्व की अपेक्षा देखेंगे तो लब्धि अपर्याप्तकों में जाकर देखना पड़ेगा। हाँ देखिए अभी आगे देखते हैं, चार नंबर डाला था हमने आयु के जघन्य को, 56 हो गया, यह सूत्र सुगम है। अब 57 नंबर, पेज नंबर 39, नाम वेयणा भावदो जघन्य अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा नाम कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी है, 5 नंबर दिया हमने उसको। नाम कर्म की जघन्य वेदना जो हमने मध्यम परिणामों से जो
नहीं नाम बाबा अति शुद्ध बादरिक इंद्रिय में,
देखो देखो नाम कर्म की बात है, वायु का एक बात
नहीं, नहीं बादरिक इंद्रिय क्योंकि बादर में विशुद्धि ज्यादा होती है।
35 पेज निकालो, हत समुत्पत्तिक लिया था, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त लिया, आप बादर की बात कर रहे हैं वो तो हाँ, नहीं उनको तो वो वायु का एक की बात याद है, आपको वो गोत्र के लिए याद है। 35 नंबर पर देखो, नाम कर्म की जो है ना हत समुत्पत्तिक जीव है और परिवर्तमान मध्यम परिणाम से युक्त है और सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव है।
गोत्र की तो हमने जो सबुत्पत्ति जो वायु का एक अग्नि का एक लिया था और ये निगोद में लिया
हाँ,
पर बादर निगोद में लिया था,
बादर निगोद नहीं सूक्ष्म निगोद,
सूक्ष्म।
अभी पेज नंबर 39 पर अपने मूल पेज पर आना, 58 नंबर पढ़ेंगे, गोद वेयणा भावदो जघन्य अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा गोत्र कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी। अभी नेचुरली वहां तो कौन सा लिया था, सूक्ष्म निगोद लिया था, उसके भाव उनसे अपेक्षा यहाँ बादर वायु का एक अग्नि का एक लिया है और वो भी अति विशुद्ध परिणामों वाला लिया है ना, तो नेचुरली वो अनंत गुणा होगा। यह सूत्र सुगम है। 59 वेदनीय वेयना भावदो जहनिया अनंत गुणा, अभी कोई बोले नहीं ये वेदनीय की जघन्य कब देखी थी हमने, मनीष हाँ हाँ बोलो, 14वें के अंत में कंडीशन क्या थी, असाता के उदय वाले, क्योंकि उपांत समय में साता वेदनीय का नाश कर दिया, नष्ट हो गए तो अक्षय हो गया, अकेली असाता रही और वो इतने कांड घात या अनुसमय पर जो कुछ होकर अभी क्या बचा उसका, मिनिमम अनुभाग बचा तो वो स्वामी है, फिर भी वो जघन्य वेदना अनंत गुणी है, क्योंकि वेदन तो भी है, कितनी बार हो गया तो भी उससे अनंत गुणी है। यानी अलग अलग प्रकृतियों के अपना अनुभाग कहाँ कितना होता है उस पर वो निर्भर है। यह सूत्र सुगम है, 60 नंबर। आयु वेयना भाव दो उपकस्य अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा आयु की उत्कृष्ट वेदना अनंत गुणी है। यह सूत्र सुगम है। आयु की उत्कृष्ट हमने देखी अप्रमत्त गुण स्थान वाले जो हाँ देवायु बांध रहे उसकी बात थी। यानी 7 नंबर पर वेदनी की जघन्य थी और 8 नंबर पर आयु की उत्कृष्ट वेदना है। आप कहेंगे उसको अनंत गुणी कहा, परंतु जब हम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट का नंबरिंग कर रहे हैं तो आयु को पहले नंबर पर रखा था। जघन्य और उत्कृष्ट में नंबरिंग कर रहे हैं तो सर्व जघन्य में सर्वोत्कृष्ट कौन था? वेदनीय। वेदनीय का जघन्य सबसे ज्यादा था, उससे आयु का उत्कृष्ट लिया गया, वो उससे अनंत गुणा है। ये 8 नंबर डाला हमने। नानावर्णीय दंसनावर्णीय अंतराय वेयना भावदो उपकसिया तिन्नी भी तुल्लाओ अनंत गुणा। ये तो अभी अभी हमने उत्कृष्ट का अल्पभूत देखा ही था ना, तो हिंदी में देखते उससे भाव की अपेक्षा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और अंतराय की उत्कृष्ट वेदनाएं तीनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी है। यह सूत्र सुगम है। इसकी तो अभी अभी चर्चा हुई थी अपनी। मोहनीय वेयना भावदो उपकसिया अनंत गुणा, उनसे भाव की अपेक्षा मोहनीय की उत्कृष्ट वेदना अनंत गुणी है। यह सूत्र सुगम है। नामा गोद वेयनाओ भाव दो उपकसियाओ दो भी तुल्लाओ अनंत गुणाओ, उससे भाव की अपेक्षा नाम व गोत्र की उत्कृष्ट वेदनाएं दोनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी है। यह सूत्र सुगम है। हमने देखा नहीं तो शुभ जो है उसके जो बंद होता है तब उसका उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है उसकी बात है। अब 40 नंबर के पृष्ठ पर वेयनीय वेयना भावदो उपकस्य अनंत गुणा, उनसे भाव की अपेक्षा वेदनीय की उत्कृष्ट वेदना अनंत गुणी है। यह सूत्र सुगम है। ये जघन्य में भी वेदनीय टॉप मोस्ट था, उत्कृष्ट में भी टॉप मोस्ट है। इस प्रकार जघन्य उत्कृष्ट अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। अब मूल प्रकृतियों के आश्रय से जघन्य उत्कृष्ट अल्प बहुत्व की प्ररूपना करके उत्तर प्रकृतियों के आश्रय से अनुभाग के अल्प बहुत्व की प्ररूपना करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ना है ना। अब ऊपर पहले हमने सूत्र पढ़ेंगे, 1 नंबर का सूत्र, क्योंकि देखो पहले तो ये मूल प्रकृतियों की बातें थी सब, अब यहाँ उत्तर प्रकृतियों की बातें हो रही है। ये सूत्र नहीं, ये गाथा सूत्र है। 1 नंबर जो गाथा सूत्र है, गाथाएं बताई है। ओरिजिनल सूत्र तो चलेगी बाद में, अब हम 64 तक आए ना, 65 बाद में कहेंगे। यहाँ गाथा सूत्र बता रहे ऊपर, पेज नंबर 40 पर है। क्या कह रहे? 1 नंबर गाथा सूत्र, वो गाथा रूप में है। 1 नंबर जो डाला है वो गाथा के लिए डाला है। गाथा 1-2 वगैरह डालेंगे। सादम जसुच्छदेकम ते आवे मनु अनंत गुणहीना ओमिच्छके असादम वीर्य अनंतानु संजलना। अभी उसका अर्थ नीचे देखते हैं। देखो एक दो लाइन में उन्होंने कितनी सारी बातें, और उसको समझाना है तो नीचे 4-5 लाइन लिखनी पड़ेगी। साता वेदनीय यश कीर्ति और उच्च गोत्र, यानी साता वेदनीय एक हुआ, यश कीर्ति और उच्च गोत्र, ये दो प्रकृतियां, देवगति, कार्मण शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर, वैक्रिक शरीर और मनुष्य गति, ये प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत गुणी हीन है। हीन की बात है, अनुभाग की ही अपेक्षा देखना है। अब मुझे बोलो, अभी तक जो हमने प्रकृतियां देखी कौन सी? साता, यशस, कीर्ति, उच्च गोत्र, देवगति, कर्मचारी, तेज शरीर, आहार, कोकरेक, मनुष्य गति, ये सारे शुभ प्रकृतियां हैं कि अशुभ है, कि उसमें कुछ शुभ है कुछ अशुभ है? हाँ नितिन भाई, कौन सी अशुभ है? देखो कौन सी शुभ अशुभ, प्रतिभा ताई अशुभ कौन सी है? वैकृत शरीर अशुभ है?
वैकृत तो प्रशस्त है।
हाँ
वैकृत तो शुभ है।
शुभ है क्या? अशुभ है
शरीर नाम कर दो में शुभ अशुभ
कंफ्यूज है।
तेजस और कार्बन
सारे ही शुभ, हाँ सारे ही पांचों शरीर नाम कर्म है वो शुभ में जाए। देखो औदारिक शरीर, अब मिथ्यात्व जो है, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, असाता वेदनीय वीर्यांतराय, ये चार प्रकृतियां, अनंतानुबंधी चतुष्टय और संज्वलन चतुष्टय, ये प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत गुणी हीन है, हीन वाली बात है, ऊपर की भी हीन ही है, यानी वह उत्कृष्ट से मिनिमम तक आए हैं। यहाँ पर भी ऐसा है,
एक नंबर पे लेना पड़ेगा यशस कीर्ति और उच्च गोत्र, उससे अनंत गुणा हीन है, इसको बताना चाहते
हैं। हाँ अभी इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहले तो उन्होंने एक लिस्ट बताई, अब उसकी एक एक की लेके चर्चा करेंगे। सादम, ऊपर गाथा में था ना सादम, ऐसा कहने पर साता वेदनीय का ग्रहण करना चाहिए, जस कहने से यश कीर्ति का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट में बताया है। शंका, नाम के एक देश से नाम वाली वस्तु का बोध कैसे हो सकता है? मराठी में कहावत है मालूम है, ता से ताक भात कहते हैं, ताके नहीं छाछ, तो इसे शॉर्ट में बुलाने की पद्धति है ना। आपको क्या बुलाते हैं शॉर्ट में? कुछ होगा कि नहीं होगा?
नाम ही शॉर्ट है।
नाम ही शॉर्ट कर दिया। ये सुदर्शन मेरु के लिए क्या कहते हैं? मेरु कहते, सुमेरु कहते, सुमेरु कहते। हमारे घर में एक संगीता है, उसको क्या कहते हैं? सैंग। और एक विशाल है, उसको कहते विष। अभी WSH विष लेना है कि विष जहर के अर्थ में लेना? तो कहते शॉर्ट के, हमने अवगाहना का टेबल देखा था, उसमें क्या देखा? नी वाते प्रू, निगोद के लिए नी, वायुकाय के लिए वा, इस तरह से यही प्रश्न पूछते हैं। नाम के एक देश से, एक देश यानी पार्ट, नाम का पार्ट लिया, हमने केवल मो लिखा, मन ममिल मो, तो ये मोक्षा समझ गई। देखो तो प्रश्न ही पूछ रहे, नाम के एक देश से नाम वाली वस्तु का बोध कैसे हो सकता है? यानी पूरा नाम वस्तु का रखा है तो पूरी वस्तु कैसे ख्याल में आ जाती है? समाधान, नहीं, क्योंकि देव, भामा व सेन शब्दों से क्रमशः बलदेव, बलदेव के बदले केवल देव कह रहे थे, सत्य भामा के लिए भामा शब्द का प्रयोग होता है, व भीम सेन का प्रत्यय होता हुआ देखा जाता है, तो भीमसेन के बदले सेन शब्द आता है, ऐसा भी आता है ना, प्रियदर्शिनी, तो प्रिया कह देंगे उसको, देव प्रिया है उसके लिए प्रिया कहेंगे, कुछ ऐसे हम शॉर्ट कर देते हैं कि नाम बहुत अच्छी रुचि से माँ बाप उसके चार अक्षर ही पांच अक्षर ही नाम रखेंगे, तो उसका शॉर्ट तो करना ही है। यदि कहा जाए कि लोक व्यवहार चपल होता है, यानी लोक व्यवहार में तो शॉर्ट करने की पद्धति है, तो उसको भी बात नहीं है, क्योंकि व्यवहार की विषयभूत वस्तु की चपलता नहीं बन सकती, यानी भले वो लोक व्यवहार चपल होगा यानी शॉर्ट में कर देगी, पर उसकी जो वस्तु है वो तो जैसी है वैसी रहती है। उच्च, ऐसा कहने पर उच्च गोत्र का ग्रहण करना चाहिए, जो गाथा में जो शब्द आए हैं मीन्स आदम आया, जसा आया, उच्च आया, बाद में तो दे कम, ऐसे शब्द आए. शंका. हाँ, यहाँ पर विराम किस लिए किया गया है? तो कहते हैं यश कीर्ति और उच्च गोत्र का अनुभाग समान है, यह जतलाने के लिए यहाँ विराम किया गया है. जसु के बाद वो एक डैश दिया है, देखो ऊपर सादम जसुच्च लिखा है, फिर दे, फिर कम, इस तरह से. दे ऐसा कहने से, वो करने से नहीं, कहने से करो. पुरानी पुस्तक में नई में बराबर है क्या? कहने से करो, कहने से है ना. हाँ, वो तो सुधार के भेजा था उन्होंने, सुधार है कितना ही. हाँ हाँ, र है उसका, ह करो. दे ऐसा कहने से देवगति का ग्रहण करना चाहिए, कम ऐसा कहने पर कार्मण शरीर का ग्रहण करना चाहिए, ते ऐसा कहने पर तेजस शरीर का ग्रहण करना चाहिए. क्योंकि यहाँ नाम कर्म की बात हो रही है, कहीं ते तेज का एक के लिए भी ते लिखते हैं. अब यहाँ क्या हो रहा है अर्थ वो बता रहे हैं, और वो मूल में वीरसेन स्वामी ने प्राकृत में लिख दिया, ऐसी टीका ही लिखी है, केवल वो हिंदी वालों ने नहीं लिखा है. आ ऐसा कहने पर आहारक शरीर का ग्रहण करना चाहिए, वे ऐसा कहने पर वैक्रिक शरीर का ग्रहण करना चाहिए. मनुपद का निर्देश मनुष्य गति का ग्रहण करने के लिए किया गया है. ये उपर्युक्त सब प्रकृतियां उत्तर उत्तर एक दूसरे की अपेक्षा क्रम से अनंत गुणी हीन है. यानी पहली है सबसे उत्कृष्ट अनुभाग, यानी उससे दूसरा नंबर पर वो अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन, इस तरह से. यह अनंत गुणहीन पद का निर्देश मेंढक उत्पतन न्याय से आगे भी अनुवृत्त होता है, क्योंकि कहीं पर विराम देखा जाता है. क्या कहते हैं? मेंढक उत्पतन मेंढक मेंढक यानी वो फ्रॉग फ्रॉग मेंढा नहीं मेंढक वो तो जंप मारता है ना, तो अनंत गुणा वाला डिफरेंस होता है. यह अनंत गुणहीन पद का निर्देश मेंढक उत्पतन न्याय से आगे भी अनुवृत्त होता है, यानी अनंत गुणाहीन ये पद आगे भी लगता है, बस इतना ही. कंटिन्यूस, क्योंकि क्या कहते हैं ऊपर की लाइन में, सादम जसुच्च देकम ते आ वे मणु अनंत गुणहीना ओमिच्छ के असादम वीरी अनंतानु संजलना. यह अनंत गुणहीन शब्द जो है पहली लाइन में भी लगता है, दूसरी लाइन में भी लगता है, यानी आगे भी जो कुछ वहां आए हैं शब्द उसमें भी ये बात लगती है. ओ पद का निर्देश अवतारिक शरीर का ग्रहण करने के लिए किया है, यानी वहां दो लाइन में दो लिस्ट बनाए, परंतु हम पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं. यानी ऊपर मनुष्य गति की बात ली थी ना लास्ट में, मणु की बात, उससे औदारिक शरीर, फिर मिथ्यात्व, फिर इस तरह से उसका कंटिन्यूस में नंबरिंग ले लेना. मिच्छा यह निर्देश मिथ्यात्व कर्म का ग्रहण करने के निमित्त है. के पद का निर्देश केवल ज्ञानावरण व केवल दर्शनावरण का ग्रहण करने के लिए किया है. असाध पद का निर्देश असाता वेदनीय का ग्रहण करने के लिए है. वीर्य पद का निर्देश वीर्यांतराय का ग्रहण करने के लिए निमित्त है. क्योंकि ये तो हम नहीं जान सकते ना उत्तर प्रकृतियों में किसका अनुभव किसके कितना है. इन चार प्रकृतियों का अनुभाग समान है, क्योंकि यह अनंत गुणहीना की अनुवृत्ति का अभाव है. क्योंकि कौन सी बात लिए? नहीं नहीं, देखो देखो, मिच्छा के असाद और वीर्य लिखा है ना, मिच्छ के असाधम वीर्य. शंका, उसकी अननुवृत्ति, देखो अनुवृत्ति यानी कंटिन्यूटी, और अनुवृत्ति यानी कंटिन्यूटी नहीं है, वो चार समान है। इसका परिज्ञान किस प्रमाण से होता है? देखो हमने जो हिंदी सूत्र देख लो तो आपको ख्याल आएगा क्या कहना चाहते हैं। औदारिक शरीर लिया तीसरी लाइन हिंदी के, फिर मिथ्यात्व लिया कॉमा लिया, फिर केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण असाता वेदनी वीर्यांतराय चार को इकट्ठा लिया है, चार प्रकृतियां लिया यानी सबका समान है इसलिए चार का ग्रुप किया, उसका अनुभाग समान है।
यहाँ पे चार कौन सा? केवल ज्ञानावरण केवल
दर्शनावरण असाता वेदनी और वीर्यांतराय, हाँ ये चार प्रकृतियां। हाँ वहाँ यशस्कृति उच्च गोत्र को लिया है साथ में, वो तो शुभ प्रकृतियां थी, और यहाँ केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण असाता वेदनी और वीर्यांतराय। अब आगे देखते हैं, तो इसमें वो अनंत गुणाहीन नहीं लगाना, उसमें चारों को समान रखना, फिर उसके आगे का जो नाम आएगा उसमें अनंत गुणाहीन लगा लेना। तो कहते यहाँ अनंत वृत्ति कैसे जानिए, उसका समाधान इस गाथा सूत्र के विवरण रूप से रचे गए आगे के चूर्णी सूत्र से उसका परिज्ञान होता है। यानी जो चूर्णी सूत्र रूप से जो कोई रचनाएं है, चूर्णी सूत्र नाम का ग्रंथ भी है, तो उसे ये बातें जानी जाती हैं। अनंताणु पद का निर्देश, अनंता करो अतंता हुआ, अनंतानुबंधी चतुष्टय का ग्रहण करने के लिए चारों का समान है। यहाँ तो समान है तो थोड़ा हीना दिखता है, पर भी उसको इकट्ठा ले लिया यहाँ पर। यहाँ लोभ के अनुभाग में अनंत गुणहीन पद की अनुवृत्ति होती है, आगे की तीन कषायों में उसकी अनुवृत्ति नहीं होती, क्योंकि लोभ से माया विशेषहीन है, इससे क्रोध विशेषहीन है, इससे मान विशेषहीन है, और इस प्रकार सॉरी क्या कहना चाहते हैं आपको याद है? लोमा क्रोमा वाली बात देखी थी हमने तो, हाँ क्रोध मान माया लोभ थे ना, वो अश्वकर्ण हुआ था तो याद होगा आपको। तो लोभ में सबसे हीन हो जाता है, पहले कैसा था मान में सबसे हीन थे, फिर क्रोध में ज्यादा था, क्रोध में ज्यादा मान में हीन, फिर माया में ज्यादा और लोभ में ज्यादा, ऐसा था पूर्व अवस्था में। तो कहते यहाँ क्या लिख रहे हैं, लोभ से माया विशेष हीन है, हीन की बात करें हम अधिक से बात करेंगे तो सबसे कम मान का, फिर क्रोध का, फिर माया का, और फिर लोभ का सर्वाधिक है। तो लोभ से थोड़ा कम मान माया में, इससे क्रोध विशेषहीन है और उससे मान विशेषहीन है, परंतु वो अनंत गुणा का डिफरेंस नहीं है उसमें, तो उसको चार को इकट्ठा लिया है। इस प्रकार आगे के सूत्रों में उसकी प्ररूपना की जाने वाली है, वो आगे चलकर बताने वाले हैं, उत्तर प्रकृतियों में अल्पभूत वो बताएंगे आगे। अब इसको चार को इकट्ठा लिया है, नहीं ये जो लोमा क्रोमा बाद में होगा, पहले क्रोध मान, पहले मान क्रोध माया लोभ, अब हीनता की लेना है तो लोभ, फिर माया, फिर क्रोध, फिर मान, वो पूरी संसार अवस्था में जब तक वो अपूर्व स्पर्धक नहीं होते हैं तब तक ऐसी अनुभाग की रचना होगी। हाँ लोभ का अनुभाग ज्यादा है, अभी लोभी क्या प्रत्येक जीव लोभ मान माया में तो परिवर्तन होता है, हंतर तंत्र मूर्त होता ही रहता है उसका, हाँ दिखता है ना क्रोध ही दिखता है सबको। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अभी हम यहाँ आते हैं ना 42 पेज पर आए, क्योंकि आगे उसकी सूत्र में प्ररूपना करेंगे। क्रोध मान माया लोभ में जो कुछ हिना दिखता है वो भले अनंतानुबंधी हो या संज्वलन हो, सब में ऐसा ही होगा, लोभ सर्वाधिक, उससे कम माया, उससे कम क्रोध, फिर मान। संज्वलना वो स के ऊपर बिंदी दे दो, ऐसा कहने पर चार संज्वलन कषायों का ग्रहण किया है। उनमें से संज्वलन लोभ में अनंत गुणहीन पद के अधिकार की अनुवृत्ति होती। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पहले अनंतानुबंधी लिया, अनंतानुबंधी में ऑर्डर कैसे? लोमा क्रोमा। तो जो अनंतानुबंधी क्रोध के पहले कौन सा किसका नंबर था, किससे अनंतानुबंधी लिया था? वीर्यांतराय से। वो चार को इकट्ठा लिया था, उनसे अनंत गुणाहीन अनंतानुबंधी के चार होते हैं, पर चार समान नहीं होते, विशेषहीन विशेषहीन लोमा क्रोमा। अब लोमा क्रोमा हुए ना, यानी मान हो गया। तो अनंतानुबंधी के मान से संज्वलन का लोभ अनंत गुणाहीन होगा, ये कहना चाहते हैं। यहाँ लिखा है ना, उनमें से संज्वलन लोभ में अनंत गुणहीन पद के अधिकार की अनुवृत्ति होती है। आगे की कषाय में नहीं, आगे के ने संज्वलन लोभ में हुए, परंतु संज्वलन माया उससे थोड़ा कम है, विशेषहीन है। उससे क्रोध विशेषहीन है, उससे मान विशेषहीन है। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? तो कहते ऐसा ही है, अनुभाग की अपेक्षा ऐसा ही है। समाधान, यह आगे कहे जाने वाले सूत्र से जाना जाता है। ये पूरा अभी बताएंगे कैसा उसका होता है। पहले भी हमने जीवकांड वगैरह में पढ़े हैं, अभी भूल गए ना। देखो यहाँ भी माया क्रोध और मान के अनुभागों में क्रमशः विशेषहीनता का कथन करना चाहिए। संज्वलन में भी यही ऑर्डर होगी, लोभ सर्वाधिक अनुभाग वाला, फिर माया, फिर क्रोध, फिर मान। यानी पूरी संसार अवस्था में ऐसा होगा, 90 गुण स्थान में जाकर फिर उसके तो अनुभाग की ऑर्डर चेंज हो जाए, जिसको कहते अश्वकर्ण करण, आपको याद होगा वो। यानी वो क्रोध से लोभ तक घटता हुआ होता है, क्रोध में सर्वाधिक रह जाता है, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। ये तो जब अश्वकर्ण नाम का कर्ण होता है तब जाके ये बात होती है, अभी यहाँ नहीं। अब ये दो नंबर की गाथा सूत्र हमको पढ़ेंगे ऊपर। अठाभिण परिभोगे चक्षु तिन्नित्य पंचनो कसाया निद्दा निद्दा पयला पयला निद्दाय पयलाय। अनुभाग की अपेक्षा देख रहे हैं, क्योंकि बंद तो सबका हो रहा है ना, परंतु अनुभाग वो प्रकृति विशेष है उसका, वो प्रकृति की विशेष से उसमें अनुभाग ऐसा ही पाया जाता है। ये जो सारे हम अल्पभूतव देख रहे हैं गाथा उनके द्वारा, हमने सर्वाधिक हमने सातावेदनीय से शुरुआत किया था और बाकी यशस कीर्ति उच्चकोत्तर, ये जो अभी हम नंबरिंग लगा रहे हैं, पहले हमने अनंतानुबंधी, फिर संज्वलन लिया, संज्वलन के बाद अभी ये आठ कषायों को ले लेंगे। देखो सूत्र पढ़ेंगे, यानी वो कंटिन्यूएशन में जानना पहले से। आठ कषाय अर्थात चार प्रत्याख्यानावरण और चार अप्रत्याख्यानावरण, उसके बाद हाँ आठ कषाय ने चार, चार प्रत्याख्यानावरण ने क्रोध मान माया लोभ, यानी पहले लोभ लोमा क्रोमा वही ऑर्डर होगी। यानी जो अनुभाग की अपेक्षा अनंतानुबंधी, फिर संज्वलन, फिर प्रत्याख्यानावरण, लास्ट में अप्रत्याख्यानावरण, ये उसके ऑर्डर होगी। देखो आठ कषाय ने चार प्रत्याख्यानावरण, चार अप्रत्याख्यानावरण। अभिनिबोधि ज्ञानावरण, जिसको हम मति ज्ञानावरण कहते हैं, और परिभोगांतराय, ये दो परिभोग है ना, उपभोग और भोगोपभोग, भोग और उपभोग होता है ना, वो परिभोग। चक्षु दर्शनावरण, तीन त्रिक अर्थात श्रुत ज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनावरण और भोगांतराय, ये तीन प्रकृतियां। देखो पहले मति ज्ञानावरण लिया, परिभोगांतराय देखा, ज्ञानावरण में पहली ली, अंतराय में लास्ट ली, बराबर। उसके साथ दर्शनावरण की कोई नहीं ली थी, फिर चक्षु दर्शन को अकेला लिया, फिर तीन त्रिक कौन से तीन लिए वहाँ पर?
शुद्ध
ज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनावरण और भोगांतराय। देखो हम अंतराय का नंबर कैसे कहते हैं, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। अभी वीर्यांतराय को तो पहले ले चुके थे वह। परिभोग है ना उपभोग, नहीं समझे आपका प्रश्न क्या है?
नहीं देखो
समझो अंतराय कर्म के नाम क्या है? वीर्य, उसके अंतराय लगा लो, बराबर ना। वीर्यांतराय को ले चुके थे वो, अभी उसमें रहा क्या, उल्टे क्रम से लेना है, लाभ भोग उपभोग। तो उपभोग है ना परिभोग, उपभोग का ही अर्थ परिभोग है, यानी परिभोगांतराय ने उपभोगांतराय, परि का अर्थ वहाँ उपभोगांतराय। नहीं वो केवल दो है ना, ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण और उपभोगांतराय, फिर अकेले चक्षु दर्शनावरण, फिर श्रुत ज्ञानावरण और चक्षु दर्शनावरण और भोगांतराय, ये तीन हो गए ना। अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय, ये तीन प्रकृतियाँ, तीन तीन का भी ग्रुप बनाए। फिर मन परे ज्ञानावरण, स्त्यान वृद्धि और दानांतराय, ये तीन प्रकृतियाँ। फिर पांच नौकषाय अर्थात नपुसक वेद, अरति शोक भय जुगुप्सा, फिर निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, ये प्रकृतियाँ क्रमशः उत्तरोत्तर अनंत गुणहीन है। इसमें अपना दिमाग कुछ नहीं चलेगा तो एक शायद आपको याद होगा, अभी जो देशघातीकरण है ना उसमें भी यही वो आता है, किसका हाँ यही ऑर्डर से वो होती थी। तो अनुभाग में जिसमें ज्यादा है उसका पहले होता होगा, है ना। इस द्वितीय गाथा सूत्र का अर्थ कहते हैं यथा, ये केवल हम शब्दों का अर्थ बता रहे हैं पर, क्योंकि उसमें क्यों ऐसा है, बस ऐसा स्वभाव है और जो है वो उसका कथन आता है। अठ ऐसा कहने पर आठ कषायों का ग्रहण किया गया है, उनमें से प्रत्याख्यानावरण लोभ में चूंकि अनंत गुणहीन अधिकार की अनुवृत्ति आती है। क्या कहना, अभी पहले हमने कहा तक रुके थे, पहली गाथा में संज्वलन तक, तो संज्वलन में लोमा क्रोमा मान सबसे हीन था, वो संज्वलन मान से अनंत गुणा हीन प्रत्याख्यानावरण का लोभ होगा, तो लोभ के लिए अनंत गुणा शब्द हीन शब्द लगेगा, आगे विशेष हीन शब्द लगेगा। यही कह रहे कि प्रत्याख्यानावरण लोभ में चूंकि अनंत गुणहीन अधिकार की अनुवृत्ति आती है, यानी वो कंटिन्यूएशन उसमें लगता है, अतः संज्वलन मान के अनुभाग से प्रत्याख्यानावरण लोभ का अनुभाग अनंत गुणाहीन है। ये तो समझ में आई बात, उससे प्रकृति विशेष होने के कारण माया विशेषहीन है। कौन सी माया? प्रत्याख्यानावरण। उससे क्रोध विशेषहीन है, उससे मान विशेषहीन है, क्योंकि इनमें अनंत गुणहीन अधिकार की अनुवृत्ति नहीं होती। अनंत गुणहीन उसमें नहीं हुआ, विशेषहीन विशेषहीन होता है। उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभ अनंत गुणाहीन है, भले आठ एक साथ कहे हैं, परंतु उसमें प्रत्याख्यानावरण के मान से अप्रत्याख्यानावरण का लोभ अनंत गुणाहीन है, ये कहना है, क्योंकि उसमें अनंत गुणहीन पद की अनुवृत्ति होती है। आगे माया आदि विषय क्रमशः विशेषहीन है, क्योंकि उनमें अनंत गुणहीन पद की अनुवृत्ति नहीं होती, यानी उसमें वो अनंत गुणहीन ये शब्द नहीं लगेगा। समझ में आती है मनीषा भी? ख्याल में आई ना, चार का ग्रुप वो विशेषहीन में रखना, फिर अनंत गुणहीन लगाना। हाँ। शंका, यह सब किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, आगे कहे जाने वाले चूर्णी सूत्र से जाना जाता है, यानी आगे उसके कुछ सूत्र बताने वाले है, ये गाथाएं बता रहे है, गाथा का अर्थ खोलकर अपने को बता रहे हैं। ये सब जो उसके दंडक आते हैं ना, अनुभाग के दंडक बताएंगे आगे, उसमें सब आने वाली है बातें। आभिणी ऐसा कहने पर आभिनिबोधिक, अभी हुआ है, आभी चाहिए, ऊपर क्या लिखा है, आभिणी आभिनिबोध्य नाना वर्ण्य गणम, अभी निबोधिक नहीं होता है, आ भी निबोधिक होता है, आ करो उसका क्या कहते हैं आभिनी, ऐसा कहने पर आभिनिबोधिक ज्ञानावरण का ग्रहण होता है। ये आभिनिबोधिक शब्द कैसे तैयार हुआ बहुत बार बताया था,
सन्मुख
देख देखा, अभी अभी यानी सन्मुख, ये किसकी बात चल रही है, मति ज्ञान की, मति ज्ञान यानी इंद्रिया मन के द्वारा जो होता है, तो इंद्रिया अपने विषय के सन्मुख होकर उसको जानती है, अभी यानी सन्मुख, नी यानी निश्चित नियत, आंखें किसको जानेगी, हाँ मीठा है का खट्टा है समझेगा आंखों से, नहीं समझेगा, तो वर्ण को जानेगी, और जीभ से क्या समझेगा, काला है कि गोरा है तो इंद्रियां अपने अपने विषय को जानती है, ये इसलिए नी आया सन्मुख होकर अपने, हाँ और बोध यानी उसका बोध होता है ज्ञान होता है, इसलिए जो मति ज्ञान को आभी निबोधिक इतना लंबा चौड़ा नाम आता है। परिभोग कहने पर परिभोगांतराय का ग्रहण होता है, ये दोनों ही परस्पर समान होकर पूर्व के अनुभाग से अनंत गुणहीन है, यानी उनका अनुभाग समान है, बस इतना ही चाहते हैं। शंका, इनकी समानता का अक्षर डालो, इनकी समानता का परिज्ञान किस प्रकार से प्रमाण से होता है। समाधान, उसका परिज्ञान परम गुरु के उपदेश से होता है, परम गुरु यानी भगवान तीर्थंकरों का जो उपदेश है उसी से ये बात ज्ञात हो गई। चक्षु, ऐसा कहने पर चक्षु दर्शनावरणी का ग्रहण होता है। देखो ये अभी अनुभाग के ये पढ़ने पर ये ख्याल आता है ना, ये जब वहाँ देशघातीकरण वगैरह जो हुआ था तो उसी ऑर्डर में क्यों हुआ था, कि उन्हीं ग्रुप को एक साथ लिया था कि जिनका अनुभाग समान था, तो चक्षु दर्शनावरण का तीन पद के निर्देश से एक दूसरे को देखते हुए अनुभाग की अपेक्षा समान श्रुत ज्ञानावरण और चक्षु दर्शनावरण और भोगांतराय का ग्रहण होता है। शंका, इनकी समानता किस प्रमाण से जानी जाती है। समाधान, नहीं क्योंकि वह आचार्यों के उपदेश से जानी जाती है, इस कारण इनमें से प्रत्येक में अनंत गुणहीन पद के अधिकार का संबंध नहीं है किंतु समुदाय में है। क्या कहना चाहते हैं, ये तीन को इकट्ठा रखना और वो पूर्व पद से अनंत गुणहीन है ऐसा समझना, पर वो तीन एक समान है। तीय ऐसा कहने पर अनुभाग की अपेक्षा परस्पर समान अवधि ज्ञानावरणीय अवधि दर्शनावरणीय और लाभांतराय का ग्रहण होता है। तिन्नी और तीय यानी तीन भी और फिर दोबारा तीन, यानी पहले तीन कौन से बताए, श्रुत ज्ञानावरण अचक्षु दर्शन और भोगांतराय, और फिर तीन कौन से बताए, अवधि ज्ञानावरण अवधि दर्शनावरण लाभांतराय। तो समानता किस प्रमाण से जानी जाती है, वह आगे कहे जाने वाले चूर्णी सूत्र से जानी जाती है। परस्पर अनुभाग की अपेक्षा समानता को प्राप्त हुई मनपर्य ज्ञानावरणीय स्त्यांग वृद्धि और दानांतराय, इन तीन प्रकृतियों का भी ग्रहण तिन्नितीय पद के निर्देश से ही होता है, क्योंकि इसके बिना तीन त्रिक घटित नहीं होते। क्या कहना भाई, तीन बार तीन का वो जो, हाँ यानी तीन वाला जो है जो कड़ा उसका तिकड़ा कहो उसको, तो तीन बार लेना है, पहले तीन में चक्षु दर्शन चक्षु है श्रुत ज्ञानावरण अचक्षु दर्शन और भोगांतर है, दूसरे त्रिन में
अवधि ज्ञानावरण अवधि दर्शनावरण
लाभांतर, और तीसरे त्रिक में मनपरे ज्ञानावरण स्त्यांग वृद्धि और दानांतर है, उसको तिन्नितीय। अभी वो लब्धिसार में वो स्त्यांग वृद्धि का नाम नहीं है, क्यों नहीं है,
नहीं उसका सही है,
बोलो उन्होंने बराबर उत्तर दिया, आप क्या कहते हैं,
लब्धिसार
स्त्यांग वृद्धि उसकी क्षपना हुई थी, कहाँ हुई थी, आठवें गुणस्थान में एक भी कर्म क्षय नहीं
होगा,
अरे क्षपना की बात है, आप बंद विच्छित की बात कर रहे हैं, नवे में होते हैं जो नाम कर्म की चली जाती है 13 और ये 3 16 प्रकृतियों का क्षय होता है ना,
13 तिर्यक गति वाली
समझ में आई बा, और फिर 8 कषायों का होता है और फिर बाद में जाकर वो ये सब देशघातीकरण बहुत आगे चलकर होता है। इसलिए वहां पर मन परिज्ञान और उनके साथ केवल ज्ञान मात्र दानांतराय को रखा है। अभी आगे यहाँ पर भी अनंत गुणहीन पद के अधिकार की अनुवृत्ति समुदाय में ही करनी, यानी तीनों को एक साथ रखकर अनंत गुणहीन कहना और तीनों की एक दूसरे में समानता है। पंच नौ कषाय ऐसा कहने पर 5 नौ कषायों का ग्रहण होता है। नौ कषाय कितने होते हैं? उसमें से ये 5 यहाँ ग्रहण किए। अभी ये कौन से वो बताएंगे यहाँ पर 44 पेज पर। यहाँ अनंत गुणहीन पद के अधिकार की अनुवृत्ति प्रत्येक में करानी चाहिए यथा, देखो वो 5 का ग्रुप नहीं लेना है, हाँ तो उसमें नपुसक वेद अनंत गुणहीन है, किससे लास्ट में हमने जो त्रिक वाला लिया था ना मन परे वगैरह वगैरह स्थान वृद्धि और वो दानांतराय, उनसे अनंत गुणहीन नपुसक वेद में लेना, उससे अरति अनंत गुणहीन है, उससे शोक अनंत गुणहीन है, उससे भय अनंत गुणहीन है, उससे जुगुप्सा अनंत गुणहीन है, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला निद्रा और प्रचला ये प्रकृतियां क्रमशः उत्तरोत्तर अनंत गुणहीन है। हमेशा हम कहते हैं स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला निद्रा और प्रचला, ये क्रम हम अनुभाग की अपेक्षा लेते हैं क्योंकि अनंत गुणहीन पद के अधिकार का संबंध इनमें से प्रत्येक में है। हाँ? मूल ग्रंथम की गाथा, हाँ गाथा है तो जो प्रक्षिप्त गाथा है, परंतु ये गाथा है तो मूल में से ही ली हुई है ना, षटखंडागम में होगी ना, उससे पहले गाथा सूत्र होगी और फिर वो चूर्णी सूत्र, चूर्णी ने अलग अलग सूत्र, वो सूत्र तो और अलग बात है, ये तो रेगुलर सूत्र जो है और गाथा सूत्र भी होते हैं और ये कोई रेगुलर सूत्र भी होते हैं। अभी ये तीसरा सूत्र कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी 1-2 मिनट ही बाकी है, ये होगा नहीं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो रो।